हम सभी ना मतलब ऐसे स्मार्टफोन की कल्पना कर सकते हैं जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पुराना हो।
शायद 10 या 15 साल पुराना।
हाँ बिल्कुल,
वो सिस्टम शायद काम करता हो, कॉल्स लग जाती हो और मैसेज भी चले जाते हो,
लेकिन उसकी कमियां साफ नजर आती है ना।
एकदम सही, वो धीमा है, बार बार क्रैश होता है और मतलब सबसे बड़ी बात, वो नई तकनीक का बोझ तो बिल्कुल नहीं उठा सकता।
हाँ, और फिर एक दिन एक बिल्कुल नया शानदार अपडेट आता है
और वो कोई छोटा मोटा पैच नहीं होता, बल्कि वो पूरी व्यवस्था को जड़ से बदल देने वाला एक ऐसा अपडेट है जो पुराने सिस्टम को हमेशा के लिए अप्रासंगिक कर देता है।
तो आज हम इतिहास के एक ऐसे ही बड़े सिस्टम अपडेट की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल,
आज के हमारी इस डीप डाइव में हमारे पास स्रोतों के रूप में डॉक्टर डेविड ए. डिसिल्वा का एक बेहद गहन लेक्चर है
जो इब्रानियों यानी हिब्रूस के 9वें और 10वें अध्याय पर आधारित है।
हाँ, जिसका मूल विषय है मसीह हमारा प्रायश्चित। इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ ने धार्मिक कर्म कांडों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था।
मतलब जो लगातार जानवरों का खून बहता था और ईश्वर के साथ जो इंसानी रिश्ते का नजरिया था,
यस,
वो सब कुछ बदल गया।
तो इस पूरी घटना को समझने के लिए ये जो सिस्टम अपडेट वाली एनालॉजी है, ये बहुत सटीक बैठती है।
बिल्कुल बैठती है। डॉक्टर डी सिल्वा अपने व्याख्यान में इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कैसे इब्रानियों का लेखक उस पुरानी धार्मिक व्यवस्था को, जिसे हम लेवीय व्यवस्था या लेविटिकल लॉ कहते हैं,
हाँ,
उसे वो महज एक परछाई कहता है।
मतलब एक शैडो।
हाँ, उस लेखक के अनुसार वो जो पुरानी व्यवस्था थी, उसके सारे नियम और वे जो बड़े बड़े मंदिर थे, वो असलियत नहीं थे।
तो वो क्या थे?
वे सिर्फ आने वाली अच्छी चीजों की एक धुंधली परछाई मात्र थे। पुराने सिस्टम में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी।
मतलब ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इंसान के पापों को पूरी तरह से मिटा सके।
बिल्कुल।
या उसकी अंतरात्मा को शुद्ध कर सके।
वो व्यवस्था सिर्फ एक इशारा थी,
एक संकेत की तरह।
हाँ, जो मानव इतिहास में भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े और असली काम की तरफ संकेत कर रही थी।
ये परछाई वाला शब्द सुनते ही ना मुझे दार्शनिक प्लेटो की याद आ रही है।
हाँ, प्लेटो की गुफा की रूपक कथा, वो तो बहुत मशहूर है,
है ना। मतलब उसमें बताया गया है कि इंसान एक अंधेरी गुफा में बंधे हुए हैं और दीवार पर पड़ रही परछाइयों को ही असली दुनिया मान बैठे हैं,
जबकि असली चीजें गुफा के बाहर हैं।
बिल्कुल। तो क्या इब्रानियों का यह लेखक भी बिल्कुल प्लेटो की तरह ही सोच रहा था?
मतलब क्या ये एक तरह का ग्रीक दर्शन है जिसे यहूदी धर्म पर थोपा जा रहा था?
देखिए, ये तुलना बहुत बार की जाती है, लेकिन यहीं पर इब्रानियों का लेखक प्लेटो से एक बहुत गहरी और बुनियादी असहमति जताता है।
ओहो, अच्छा, वो कैसे? प्लेटो की जो गुफा की कहानी है, वो मुख्य रूप से स्थानिक और अमानसिक विचारों पर आधारित है।
स्थानिक मतलब?
मतलब स्पेस से जुड़ा हुआ। प्लेटो के लिए एक भौतिक दुनिया है जो सिर्फ परछाई है और एक विचारों की दुनिया है जो असली है।
मतलब नीचे की दुनिया बनाम ऊपर की दुनिया।
एकदम सही। लेकिन इब्रानियों का लेखक एक अलग ही आयाम में सोच रहा है।
तो वो किस बारे में बात कर रहा है?
वो एक समय सीमा यानी एक ऐतिहासिक टाइमलाइन की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि असली दुनिया कहीं ऊपर बादलों में है।
अच्छा, तो वो क्या कह रहा है?
वो कह रहा है कि असली दुनिया मानव इतिहास में एक निश्चित समय पर प्रकट होने वाली थी।
मतलब ये कोई ख्याली दुनिया का मामला नहीं है, यह सीधे तौर पर इतिहास और समय से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल। पुरानी व्यवस्था उन असली चीजों की परछाई है जो भविष्य में इसी धरती पर आने वाली थी।
तो मूसा के नजरिए से देखें तो वो असली चीज भविष्य के गर्भ में थी।
हाँ, वो नया सिस्टम। लेकिन इब्रानियों के लेखक के नजरिए से वो असली चीज अब आ चुकी है। ईश्वर ने एक खास पल में इतिहास में प्रवेश किया है।
समझ गए। तो ये प्लेटो की तरह जगह का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये समय का बंटवारा है, पुराना युग बनाम नया युग।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
अच्छा, तो अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से, मतलब अगर वो पूरी पुरानी व्यवस्था, वो लेविटिकल लॉ सिर्फ एक परछाई थी, तो क्या वे पुराने सालाना बलिदान लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे?
आपका मतलब यौम किप्पुर से?
हाँ, हर साल यौम किप्पुर, जिसे सालाना प्रायश्चित का दिन कहा जाता है, उस दिन हजारों लोग इकट्ठा होते थे।
बहुत बड़ी भीड़ होती थी
और वो एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक नजारा होता होगा, है ना? जानवरों की आवाजें, खून, आग की गंध। तो क्या वो सब बिल्कुल ही बेकार था?
उसे पूरी तरह बेकार कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन इब्रानियों के लेखक ये साबित करता है कि वे अनुष्ठान नाकाफी थे।
नाकाफी मतलब वो बीमारी का असली इलाज नहीं थे।
एकदम सही। डॉक्टर डी सिल्वा इस तर्क को बहुत बारीकी से खोलते हैं। लेखक यहाँ एक बहुत ही तार्किक और सीधा सवाल उठाता है।
क्या सवाल?
वो कहता है कि अगर योम किप्पुर के उन अनुष्ठानों से, उस सारे खून खराबे से लोगों की अंतरात्मा सच में शुद्ध हो जाती तो उन्हें हर साल बार बार क्यों दोहराना पड़ता?
हाँ, ये तो है। अगर कोई काम पूरा हो गया है तो उसे फिर से करने की क्या जरूरत?
बिल्कुल, लेकिन वो बलिदान तो रुकते ही नहीं थे, इसलिए लेखक का निष्कर्ष ये है कि वे बलिदान पापों को मिटाने की जगह हर साल लोगों को उनके पापों की याद दिलाने का काम करते थे।
ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है,
है ना?
मतलब इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे किसी गंभीर बीमारी का इलाज करने की बजाय एक मरीज को सिर्फ एक अलार्म क्लॉक दे दी जाए।
अलार्म क्लॉक?
हाँ, मतलब वो अलार्म हर साल एक खास दिन बजता है और मरीज को याद दिलाता है कि अरे तुम अभी भी बीमार हो।
बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये।
मतलब वो दवा, वो अनुष्ठान बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ बीमारी का एक सालाना रिमाइंडर बनकर रह गया है।
ये अलार्म क्लॉक वाली एनालॉजी ना उस पुराने सिस्टम की विफलता को बहुत अच्छी तरह से पकड़ती है। और मजेदार बात यह है कि
हाँ,
कि इब्रानियों के लेखक को ये पापों की याद वाली बात कोई हवा में से नहीं मिली।
अच्छा, तो कहाँ से मिली?
इसके पीछे एक बहुत ही अजीब और विशिष्ट पुराना नियम है। गिनती या नंबर्स की किताब के 5वें अध्याय की 15वीं आयत में
उसमें क्या लिखा है?
ये मूल रूप से एक संदिग्ध व्यभिचारिणी महिला के लिए दिया जाने वाला जौ के आटे का बलिदान था।
अच्छा।
और इस विशेष बलिदान का मकसद पाप को मिटाना नहीं था बल्कि अपराध को सामने लाना और उसे याद दिलाना था।
ओहो, तो इब्रानियों के लेखक ने इसे पूरे सिस्टम पर लागू कर दिया।
हाँ, और दिलचस्प रूप से अलेक्जेंड्रिया के यहूदी दार्शनिक फिलो ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने इस एक बहुत ही विशिष्ट ईर्ष्या वाले नियम को उठाया
और उसे पूरे बलिदान सिस्टम की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया।
बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि योम किप्पुर का महान दिन भी असल में इसी तरह का एक बड़ा रिमाइंडर था।
लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है।
कैसा विरोधाभास?
अगर हम उस पुराने ग्रंथ लेवे व्यवस्था या लेविटिकस को ही देखें तो उसके अध्याय 16 की आयत 30 में तो साफ शब्दों में लिखा है कि ये अनुष्ठान काम करता है।
हाँ, वो आयत कहती है कि पाप शुद्ध हो जाते हैं।
बिल्कुल, वहाँ लिखा है कि इस दिन तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा ताकि तुम ईश्वर के सामने अपने सब पापों से शुद्ध हो जाओ। तो फिर इब्रानियों का लेखक उस पुराने ग्रंथ के ही मुख्य दावे को कैसे नकार सकता है? मतलब क्या वो ये कह रहा है कि लेविटिकस की किताब झूठ बोल रही थी?
ये एक बहुत बड़ी वैचारिक चुनौती थी और इब्रानियों का लेखक इसे बहुत सावधानी से संभालता है।
वो कैसे?
वो ये नहीं कह रहा कि उन अनुष्ठानों से बिल्कुल कुछ नहीं होता था। उन अनुष्ठानों से समुदाय का ईश्वर के साथ रिश्ता थोड़ा सुधरता जरूर था।
मतलब बाहरी तौर पर एक तरह की पवित्रता बनी रहती थी।
हाँ, लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि पुरानी व्यवस्था से ईश्वर तक पहुँचने की सिर्फ एक सीमित और श्रेणीबद्ध पहुँच ही मिलती थी, जिसे हम ग्रेडेड एक्सेस कहते हैं।
ग्रेडेड एक्सेस, इससे मतलब है कि हर कोई उस पवित्र स्थान तक नहीं जा सकता था।
ठीक है ही बात। उस पुरानी व्यवस्था में ना एक बहुत बड़ा पर्दा होता था।
अच्छा।
आम इंसान कभी उस पर्दे के पार नहीं जा सकता था। सिर्फ महायाजक, वो भी साल में केवल एक बार उस पर्दे के पीछे जा सकता था।
मतलब बीच में हमेशा एक दीवार, एक फासला बना रहता था।
बिल्कुल। इंसान कभी भी बिना किसी डर के पूरी तरह से ईश्वर के करीब नहीं जा पाता था। इसलिए अंतिम अर्थ में अंतरात्मा के स्तर पर लोग कभी पूरी तरह शुद्ध और आजाद नहीं हुए, और इसी आधार पर लेखक वो बेहद चौंकाने वाली बात कहता है।
कौन सी बात?
जानवरों का खून पाप नहीं मिटा सकता।
बाप रे, ये बात तो उस दौर के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी रही होगी, बल्कि शायद ईशनिंदा जैसी मानी गई होगी।
बिल्कुल मानी गई होगी,
क्योंकि लेविटिकस 17:11 तो पूरी धार्मिक व्यवस्था का आधार है ना?
बिल्कुल।
जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मांस का जीवन लहू में है और जानवरों का लहू ही वेदी पर इंसान के पापों का प्रायश्चित करता है।
हाँ, वो बहुत केंद्रीय आयत है।
तो इब्रानियों का लेखक अचानक इतनी पुरानी स्थापित और पवित्र मानी जाने वाली परंपरा को सिर्फ अपने तर्कों से कैसे पलट सकता है?
देखिए, इब्रानियों का लेखक ये बात सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं कह रहा था।
अच्छा, तो उसका आधार क्या था?
उसके पास इतिहास और पुराने नवियों का एक बहुत मजबूत समर्थन था।
डॉक्टर डी सिल्वा हमें याद दिलाते हैं कि इब्रानियों का लेखक मूसा की व्यवस्थाओं के कई सदियों बाद लिख रहा था।
और इन सदियों के दौरान खुद यहूदी नवियों ने उस बलिदान व्यवस्था की कड़ी आलोचना की थी।
जैसे कि? कोई उदाहरण?
जैसे यशाया नबी की किताब का पहला अध्याय, वहाँ ईश्वर खुद कह रहा है, मुझे तुम्हारे अनगिनत बलिदानों से क्या?
ओहो
हाँ, वो कहते हैं कि मैं मेढ़ों के होम बलियों से अघा गया हूँ, मुझे बैलों और बकरों का लहू नहीं चाहिए।
मतलब नबियों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर इंसान के दिल में सच्ची आज्ञाकारिता, न्याय और दया नहीं है, तो सिर्फ जानवरों का खून बहाना कोई जादुई टोटका नहीं है जो ईश्वर को खुश कर सके।
बिल्कुल सही। और यहीं पर इस पूरी कहानी में ना एक बहुत ही रोचक भाषाई मोड़ आता है।
भाषाई मोड़? वो कैसे?
इस दावे को साबित करने के लिए कि ईश्वर को जानवरों का खून नहीं बल्कि इंसान की सच्ची आज्ञाकारिता चाहिए, लेखक ने भजन 40 यानी साम 40 का इस्तेमाल किया है।
अच्छा।
और उस भजन के अनुवाद में जो बदलाव हुआ है ना, वो पूरी थियोलॉजी की दिशा ही बदल देता है।
ये भाषाई बदलाव तो मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या बदलाव था वो?
कान खोदे है, ये कैसा अनुवाद है?
हिब्रू भाषा में कान खोदना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है सुनने और आज्ञा मानने की क्षमता देना।
मतलब ईश्वर को जानवरों के बलिदान नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके कान ईश्वर की आवाज सुनने और उसकी आज्ञा मानने के लिए खुले हों।
बिल्कुल, हिब्रू में मुहावरे के तौर पर यह समझ में आता है, लेकिन इब्रानियों के लेखक ने इसे सीधे हिब्रू से नहीं लिया।
तो फिर कहां से लिया?
उस समय भूमध्य सागरीय दुनिया में बहुत से लोग यूनानी भाषा बोलते थे, हाँ ग्रीक। तो पुराने ग्रंथों का एक यूनानी अनुवाद तैयार किया गया था जिसे सेप्टुआजेंट कहते हैं। उन यूनानी अनुवादकों के सामने चुनौती थी कि इस कान खोदने वाले अजीब मुहावरे को यूनानी संस्कृति में कैसे समझाएं।
तो उन्होंने क्या किया?
यूनानी सोच में आज्ञाकारिता सिर्फ कानों से नहीं बल्कि पूरे शरीर से होती है, इसलिए उन्होंने इसका अनुवाद किया, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है।
एक शरीर तैयार किया है? अरे ये तो सिर्फ एक मुहावरे का अनुवाद नहीं है, ये तो पूरे अर्थ को ही एक नया आकार देना हो गया।
बिल्कुल हो गया।
मतलब कान खोदने से लेकर एक शरीर तैयार करने तक का ये सफर, ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है।
और इब्रानियों के लेखक ने इसी यूनानी अनुवाद को, इस तैयार किए गए शरीर वाले विचार को, बहुत ही बुद्धिमानी से पकड़ा और इसे सीधे यीशु मसीह के अवतार से जोड़ दिया।
ओहो, मतलब लेखक ने तर्क दिया कि ईश्वर ने पुराने नाकाफी जानवरों के खून को हटा दिया है,
हाँ,
और उसकी जगह एक ऐसा शरीर तैयार किया है, यानी यीशु का शरीर,
हाँ,
जिसका स्वेच्छा से दिया गया बलिदान ही ईश्वर की असली इच्छा पूरी कर सकता है।
एकदम सटीक, क्योंकि जानवरों को तो जबरदस्ती घसीट कर वेदी पर लाया जाता था ना, उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है।
हाँ, वो अपनी मर्जी से तो नहीं आते थे।
लेकिन यहाँ एक इंसान पूरी आज्ञाकारिता और चेतना के साथ स्वेच्छा से अपना शरीर अर्पण कर रहा है, यही वो असली बलिदान है जिसकी वो पुरानी व्यवस्था सिर्फ एक परछाई थी।
तो जब ये नया असली और आखिरी बलिदान दे दिया गया, तो इसका नतीजा क्या हुआ?
इसका नतीजा हमें एक बहुत ही विजुअल तस्वीर की तरफ ले जाता है जिसका जिक्र भजन 110 में है।
अच्छा, क्या है वो तस्वीर?
ये है खड़े रहने और बैठ जाने के बीच का अंतर। भजन 110 की पहली आयत कहती है, मेरे दाहिने हाथ बैठ जा जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों तले की चौकी न कर दूं।
तो यहाँ बैठ जाने का क्या महत्व है?
इब्रानियों का लेखक इस बैठ जाने वाले शब्द को एक बहुत बड़े वैचारिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। डॉक्टर डी सिल्वा यहां व्यवस्था विवरण या ड्यूटरोनमी 10:8 का संदर्भ देकर एक गहरा विजुअल कंट्रास्ट पेश करते हैं।
वो कंट्रास्ट क्या है?
पुरानी लिवेई व्यवस्था में जो याजक या पुजारी होते थे ना,
हाँ,
उनके लिए नियम था कि वे हमेशा ईश्वर के सामने खड़े रहेंगे।
खड़े रहेंगे? अगर हम उस समय के पुजारियों के रोजमर्रा के जीवन की कल्पना करें तो वो बहुत ही थका देने वाला काम रहा होगा।
बहुत ज्यादा।
मतलब वे हमेशा खड़े रहते थे क्योंकि जानवरों को काटना, लकड़ी ढोना, वेदी पर खून छिड़कना, ये तो एक कभी खत्म ना होने वाली खूनी और भारी मेहनत वाली प्रक्रिया थी।
बिल्कुल।
उनका काम कभी पूरा नहीं होता था, इसलिए वे कभी मंदिर में आराम से बैठ नहीं सकते थे।
इसे समझने के लिए हम किसी बहुत व्यस्त और मशहूर रेस्टोरों के किचन की कल्पना कर सकते हैं।
किचन वाली एनालॉजी?
ये इसे बखूबी स्पष्ट कर सकती है, बताइए।
मतलब एक रेस्टोरों के किचन में जब तक ऑर्डर आ रहे होते हैं तब तक शेफ लगातार खड़ा रहता है, वहाँ भागदौड़ मची रहती है, आग जल रही होती है, बर्तन खड़क रहे होते हैं।
हाँ, वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता।
शेफ तब तक अपनी जगह से नहीं हिलता जब तक काम चालू है, लेकिन रात के अंत में जब आखिरी और सबसे शानदार डिश सर्व हो जाती है और किचन के बंद होने का समय आ जाता है, तब शेफ अपना एप्रन उतारता है, एक कुर्सी खींचता है और आराम से बैठ जाता है,
क्योंकि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
हाँ, काम पूरा हो चुका है।
ये शेफ का कुर्सी खींचकर बैठना ही ना इब्रानियों के लेखक का मुख्य बिंदु है। यीशु उस नए महायाजक के रूप में अपना एकल और अंतिम बलिदान पूरा करके हमेशा के लिए बैठ गए।
हमेशा के लिए बैठ गए।
उनका बैठना इस बात की अंतिम घोषणा है कि प्रायश्चित का काम अब हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए पूरा हो गया।
मतलब अब रोज रोज किसी नए बलिदान की, किसी नए खून की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल नहीं। अब इतिहास में सिर्फ एक ही चीज का इंतजार बाकी है, और वो है बुराई का पूरी तरह से खत्म होना।
काम पूरा हो गया, प्रायश्चित हो गया और महायाजक बैठ गए। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है।
वो क्या?
इस पूरे सिस्टम अपडेट का उस आम इंसान पर क्या असर हुआ जो सदियों से उस अलार्म क्लॉक के डर में जी रहा था?
ये बहुत जरूरी सवाल है।
मतलब पुरानी व्यवस्था में तो पत्थर पर लिखे नियम थे, लेकिन अब अंतरात्मा के स्तर पर क्या बदलाव आया?
यहीं पे यर्मिया नबी की भविष्यवाणी, जो यर्मिया अध्याय 31 में दर्ज है, इस चर्चा के केंद्र में आती है,
जिसे नई वाचा या न्यू कोविनेंट कहा जाता है।
हाँ, बिल्कुल। इब्रानियों का लेखक यहाँ पवित्र आत्मा की गवाही पेश करता है कि ये नई वाचा कैसे काम करती है। इस नई व्यवस्था में दो मुख्य बातें होती हैं।
अच्छा, पहली बात क्या है?
पहली, ईश्वर कहता है कि मैं उनके पापों और उनके अपराधों को फिर कभी याद नहीं करूंगा।
मतलब वो जो पुराना अलार्म क्लॉक था, उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।
एकदम सही। और दूसरी सबसे अहम बात, ईश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके दिलों पर और उनके दिमागों पर लिख दूंगा।
इसका मतलब है कि अब नियम किसी पत्थर की तख्ती पर नहीं लिखे हैं, जिसे बाहर से पढ़ना पड़े। तो अगर ईश्वर ने नियम सीधे इंसान के दिल और दिमाग पर लिख दिए हैं और पुराने पापों का हिसाब हमेशा के लिए मिटा दिया है, तो क्या इससे उस पुरानी अपराध बोध वाली भावना का हमेशा के लिए अंत हो गया?
पूरी तरह से। डॉक्टर डी सिल्वा यही समझाते हैं कि अब बाहरी कर्मकांडों की जरूरत खत्म हो गई है, जब नियम इंसान के भीतर से ही आज्ञाकारिता पैदा कर रहे हैं, और जब पापों की हमेशा के लिए क्षमा हो गई है, तो फिर
किसी नए पाप बलिदान के कोई तार्किक जगह ही नहीं बचती।
बिल्कुल। अंतरात्मा अब अपराध बोध से, उस भारी बोझ से मुक्त है। अब लक्ष्य ये नहीं है कि दंड के डर से नियमों का पालन किया जाए,
बल्कि अब आज्ञाकारिता इसलिए आती है क्योंकि वो उस नए सिस्टम का स्वाभाविक हिस्सा है।
हाँ, वो अंदर से आती है।
ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली और आजाद करने वाला विचार है। लेकिन अगर हम इस पूरे चर्चा को आज के समय से जोड़े तो इसकी क्या प्रासंगिकता है?
आप आज के संदर्भ में पूछ रही हैं?
हाँ, अगर सारी बाधाएं हट गई हैं, मंदिर का वो भारी पर्दा फट गया है और ईश्वर तक हर इंसान को बिना किसी मध्यस्थ के सीधी पहुंच मिल गई है, तो आज के समाज या हमारे आधुनिक धार्मिक संस्थानों को इसे कैसे देखना चाहिए?
यहाँ डॉक्टर डी सिल्वा एक बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक चेतावनी देते हैं।
कैसी चेतावनी?
पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो श्रेणीबद्ध पहुंच या ग्रेडेड एक्सेस, जहां कुछ खास लोग ही ईश्वर के करीब जा सकते थे
और बाकी आम लोग बाहर खड़े रहते थे।
हाँ, तो आज के समय में भी ईसाई कलीसियाओं में या किसी भी अन्य संस्थागत ढांचे में एक बहुत बड़ा खतरा ये रहता है कि हम अनजाने में एक नई जाति व्यवस्था या पदानुक्रम बना लेते हैं।
ओह, मतलब एक तरफ पादरी, धर्मगुरु या क्लर्जी का वर्ग होता है और दूसरी तरफ आम लोग यानी लेटी।
बिल्कुल।
मतलब इंसान की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो फिर से उसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ लौटने लगता है।
एकदम सही कहा आपने।
हमें लगता है कि हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेषज्ञ या मध्यस्थ की जरूरत है जो हमारी तरफ से बात कर सके।
और इब्रानियों का लेखक इसी मानसिकता को पूरी तरह से तोड़ता है। इस नई वाचा में कोई भी पादरी या धर्मगुरु मध्यस्थ नहीं है।
तो फिर उनकी भूमिका क्या है?
उन्हें केवल सहायकों या इक्विपर्स के रूप में देखा जाना चाहिए, जिनका काम समुदाय को तैयार करना और प्रेरित करना है। अब हर एक विश्वासी खुद एक याजक यानी पुजारी है। हर एक इंसान को सीधे प्रार्थना करने, सेवा करने, प्रेम बांटने और गवाही देने का अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मतलब किसी भी आम इंसान का रोजमर्रा का जीवन किसी भी पादरी के जीवन से कम पवित्र नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ईश्वर की नजरों में वो ग्रेडेड एक्सेस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है।
ये विचार अपने आप में कितना क्रांतिकारी है ना, कि हर एक इंसान का जीवन, उसकी रोजमर्रा की मेहनत, उसके संघर्ष समान रूप से पवित्र माने गए हैं। धर्म सिर्फ कुछ विशेष धार्मिक पेशेवरों की जागीर नहीं रह गया है।
हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर डी सिल्वा इस चर्चा के अंत में एक और अहम बिंदु पर जोर देते हैं।
वो क्या?
हमें इस भौतिक दुनिया, जो हमें अपनी आंखों से दिखती है, उससे ज्यादा उस अदृश्य दुनिया की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए।
अदृश्य दुनिया?
हाँ, असली काम जो प्रायश्चित और मेल मिलाप का काम है, वो उस अनदेखी दुनिया में पूरा हो चुका है। हम अभी एक अंतरिम समय में जी रहे हैं।
अंतरिम समय मतलब यीशु के उस अंतिम बलिदान और उनके वादों के पूरी तरह साकार होने के बीच का समय।
बिल्कुल, इस दौरान हमारा मुख्य कार्य वफादार बने रहना है, बिना किसी पदानुक्रम के एक दूसरे की सेवा करना है और उन दीवारों को फिर से खड़ा नहीं करना है जिन्हें उस महायाजक ने हमेशा के लिए गिरा दिया है।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे इतिहास एक धुंधली परछाई से निकलकर एक ठोस असलियत तक पहुंचा। कैसे वो पुराने याजक जो अपने थका देने वाले कर्म कांडों में कभी बैठ नहीं पाते थे, उनकी जगह एक ऐसे महायाजक ने ले ली जिसने अपना काम पूरा किया और हमेशा के लिए बैठ गया।
हाँ, हमेशा के लिए।
और सबसे बड़ी बात, कैसे बाहरी नियमों और डर की जगह एक ऐसी नई वाचा ने ले ली जिसने नियमों को इंसान के दिल पर लिख दिया और अंतरात्मा को अंदर से शुद्ध कर दिया,
और जिसने ईश्वर और इंसान के बीच की सारी दीवारों को, सारे सारे श्रेणियोंबद्ध सिस्टम को हमेशा के लिए ढाकर हर इंसान को बराबर की गरिमा और पहुंच दी।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ना सोचने वाली एक बहुत ही गहरी बात है।
वो क्या?
आज की चर्चा से हमें ये पता चला कि सर्वोच्च बलिदान दिया जा चुका है और सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचने की सारी बाधाएं, सारी श्रेणियां खत्म हो चुकी हैं।
हाँ, हम पूरी तरह से आजाद हैं।
लेकिन फिर भी जरा आज के इंसानी स्वभाव को देखें। एक इंसान के तौर पर हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ना नए नए बलिदान क्यों रचते रहते हैं?
ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है,
है ना? चाहे वो हमारे करियर में खुद को साबित करने की अंधी दौड़ हो या रिश्तों में खुद को हमेशा योग्य और परफेक्ट दिखाने की कोशिश हो।
ऐसा लगता है जैसे हम खुद को एक नए सिस्टम में फंसा रहे हैं।
बिल्कुल, तो क्या हम इंसान आज भी किसी न किसी परछाई के गुलाम बने रहना पसंद करते हैं बजाय उस आजादी को स्वीकार करने के जो हमें मुफ्त में दी गई है?
क्या हमें आजादी से ज्यादा पिंजरे की वो पुरानी आदत पसंद आ गई है?
यही वो गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।
आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर सोचते रहिए, पुराने सिस्टम्स पर सवाल उठाते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।